हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
तो मैं वीडियो में आओ छोड़ रहा हूं, मैं वीडियो में आओ छोड़ हटो नहीं।
हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा प्रभु जी।
जोर से बोलना
हरे कृष्णा बाबू जी,
हरे कृष्णा। तो हम लोग आज दूसरा दिन है, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भगवद गीता का पढ़ा, समझा थोड़ा बहुत, और हमने जाना कि भगवान कृष्ण को जब तक हम अथॉरिटी नहीं मानेंगे तब तक हम भगवद गीता को समझ नहीं सकते। आज हम लोग भगवद गीता का महात्म्य के बारे में जानेंगे, और साथ साथ में हम जानेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो भगवद गीता का है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हमने दो दिन की क्लास रखा है, मंडे और ट्यूसडे, पर इस वीक में ये क्लास संडे और मंडे को हो रही है। तो आज सबसे पहले हम लोग गीता महात्म्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता का महात्म्य ये पद्म पुराण में पाया जाता है। पद्म पुराण में साथ साथ में शंकराचार्य द्वारा रचित कुछ श्लोक भी हैं, वो भी भगवद गीता के महात्म्य के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार भगवान कृष्ण, भग शब्द का अर्थ हमने समझा था कि जो छह ऐश्वर्य होते हैं उनको भग में काउंट किया जाता है, और जो ऐसे जिसके पास सारे एक छह के छह ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में रहते हैं उसको भगवान बोल सकते हैं। फिर हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ब्रह्मा जी ने 16 चिन्हों को देखा है, 16 प्रतीक को देखा है, जो कि प्रूव करता है कि भगवान विष्णु से भी उच्च हैं और भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये पांच पांडव और 100 पुत्र जो कि धृतराष्ट्र के हैं उनके बीच में एक युद्ध होने जा रहा है, जिसको कुरुक्षेत्र के युद्ध के नाम से जाना जाता है या महाभारत के नाम से जाना जाता है। ये सुनीता जो प्रेजेंट कर रही हैं, आप उनसे, आपसे निवेदन है, आप कृपया वो हटाएं। सुनीता जी अपनी स्क्रीन को शेयर ना करें, बीच में ऑप्शन आ रहा है स्टॉप शेयरिंग, उस पर क्लिक करें। बीच में ऑप्शन आ रहा है स्टॉप शेयरिंग, बीच में देखिए स्क्रीन के बीच में ही आपके पास स्टॉप शेयरिंग आ रहा होगा लिखा हुआ दूसरी लाइन में, उस पर क्लिक कीजिए। सुनीता जी सुनीता जी आप स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक कीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा स्टॉप शेयरिंग लिखा हुआ। थैंक यू। तो भगवद गीता महाभारत के अंतर्गत एक कुछ 18 अध्याय हैं जो कि महाभारत के अंतर्गत हैं, और भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, वो ज्ञान वास्तव में कुरुक्षेत्र के मैदान पे दिया है। वो युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे तीन भाई हैं जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर है, और धृतराष्ट्र अंधा है और इस वजह से पांडु को राजा बनाया जाता है। पांडु को राजा बनने के बाद कुछ दिनों के बाद उनको एक ऋषि के द्वारा श्राप मिलता है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके पहले उनके 5 पुत्र हो गए होते हैं कुंती महारानी के द्वारा, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री माता के द्वारा नकुल और सहदेव, और इधर धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र होते हैं जिनमें दुर्योधन प्रमुख है। इस तरीके से कुछ दिनों के बाद की बात है, जब पांडव बड़े होते हैं और धृतराष्ट्र को इधर राजा बना दिया जाता है, पांडव बड़े होते हैं तो उनके राज्य उनको देने के लिए बात होती है, तो उनको बताया था हम राज्य आपको नहीं देंगे, और बाद में दिया जाता है तो उनको एक जंगल दे दिया जाता है। भगवान कृष्ण की कृपा से वो जंगल को भी वो बहुत सुंदर राज्य में परिवर्तित कर देते हैं, और इस तरीके से सभी लोग उस राज्य में रहना चाहते हैं जहां पे युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ दिनों के बाद दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाता है। जब जुआ खेलने के लिए बुलाता है तो पता चलता है कि जुआ उनको खेलना भी है तो किससे खेलना है, शकुनी से खेलना है। शकुनी जो है वो जुआ खेलने में बहुत उस्ताद था, बहुत अच्छा खेलता था जुआ, और वो जो है धोखा भी देता था लोगों को। तो इस प्रकार से जुआ खेला जाता है, और जुआ खेलने में उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगाया जाता है। द्रौपदी को जो है निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जाता है, भगवान कृष्ण के द्वारा उनकी रक्षा होती है। और इस तरीके से एक बार जुआ खेल के फिर सारा सब कुछ जो है जो हारे होते हैं युधिष्ठिर महाराज सब कुछ वापस दे दिया जाता है, लेकिन पुनः फिर से जुआ खेला जाता है। और इस बार ये शर्त रखी जाती है कि जो भी हारेगा उसको 12 साल का वनवास होगा और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो फिर से शकुनी जीत जाता है, युधिष्ठिर महाराज हार जाते हैं, और 12 साल का वनवास के लिए वो प्रस्थान करते हैं। 12 साल वन में रहते हैं, पुनः 1 साल का अज्ञातवास उनको जो है स्वीकार करना होता है। ये अज्ञातवास में ऐसा 1 साल तक ऐसे रहना होता है कि कोई भी उनको जान ना पाए वो कहां पे रह रहे हैं। और इस प्रकार से इस 1 साल में अगर वो पकड़े गए तो फिर से 12 साल का वनवास हो जाएगा और 1 साल का अज्ञातवास हो जाएगा। तो इस प्रकार वो 13 साल जो है काट के वापस आते हैं अपने राज्य को पाने के लिए, जो कि उनका ही राज्य था, तो दुर्योधन उनको मना कर देता है। तो वो सब भगवान कृष्ण को शांति दूत के रूप में भेजते हैं, और भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि आप उनसे बोलिएगा हमें आधा राज्य नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमको 5 गाँव दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन जो कि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है वो बोलता है कि नहीं, मैं युद्ध के बिना 1 सुई के नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। इस प्रकार भगवान के समझाने के बावजूद भी दुर्योधन समझता नहीं है, और ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये अवश्यंभावी हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोग अपनी दोनों पक्ष जो है सेना को एकत्र करने लगते हैं। सारे पांडव भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग एक साथ भगवान कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण से दोनों का ही संबंध था। अर्जुन और दुर्योधन, सबसे पहले दुर्योधन पहुंचता है और भगवान आराम कर रहे होते हैं तो भगवान के सिर के पास में बैठ जाता है, और थोड़ी देर बाद के अर्जुन आता है। अर्जुन आके भगवान के चरण कमलों के पास में खड़ा हो जाता है और भगवान को प्रणाम करते हुए उनको उनका दर्शन करने लगता है। भगवान की निद्रा जब छूटती है तो अर्जुन को सबसे पहले देखते हैं, अर्जुन को जो है गले लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे आना हुआ। इधर दुर्योधन कहता है मैं भी आया हूं, तो दुर्योधन को भी गले लगाते हैं और उससे भी पूछते हैं सुकुशल पूछते हैं। फिर दोनों लोग बोलते हैं कि हम लोग आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। तो भगवान कहते हैं देखो, एक तरफ मैं रहूंगा बिना युद्ध किए, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैंने ऐसा डिसाइड किया है क्योंकि आप दोनों ही हमारे संबंधी हो तो हम दोनों को जो है खुश रखना प्रयास करेंगे, तो आप चाहो तो हमको ले लो चाहे तो हमारी सेना को ले लो। तो दुर्योधन कहता है मैं मांगूंगा पहले। भगवान कहते हैं नहीं, अर्जुन को मांगने दो क्योंकि वो छोटा है। तो इस प्रकार से अर्जुन से जब मांगने को बोला जाता है तो अर्जुन कहता है भगवान मुझे तो आप चाहिए, मुझे सेना नहीं चाहिए आपकी। जैसे ही दुर्योधन ऐसा सुनता है दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाता है और भगवान की सेना को तुरंत लेके वहां से चल देता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मालूम था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन भगवान से कहता है भगवान अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इस दुनिया में हम कुछ भी जीत सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हम जीत नहीं सकते, तो हम आपका हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने को मिलती है कि अर्जुन भगवान को प्राप्त करना चाहता है और जो दुर्योधन है वो भगवान की शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। भगवान की शक्ति माया है, जो एक अक्षौणी सेना जो नारायणी सेना थी वो माया वो भोग करना चाहता है दुर्योधन, और अर्जुन जो है वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान को प्राप्त करना मतलब भगवान की सारी शक्तियां अपने आप से उसके पास आ जाएंगी एक हिसाब से देखें तो इस तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं। भगवद गीता 18 अध्याय में विभाजित है। 18 अध्याय में 6 अध्याय शुरू के, बीच के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। तो जैसे कोई बॉक्स होता है जिसमें ज्वेलरी रखी जाती है, गहने रखे जाते हैं, उसी प्रकार ये भगवद गीता है। पहले जो 6 अध्याय हैं वो उस बॉक्स का नीचे का हिस्सा है, बीच के जो 6 अध्याय हैं वो ज्वेलरी है, और जो अंत के 6 अध्याय हैं वो भगवद गीता, वो उस बॉक्स का ढक्कन है। यानी ये जो बॉक्स में जो भी कुछ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अंदर जो ज्वेलरी रखी हुई है, जो गहने रखे हुए हैं। तो भगवद गीता के जो 6 अध्याय बीच के हैं, 7 नंबर अध्याय से लेकर 12 नंबर अध्याय तक, वो भगवद गीता का गहना है, वो भगवद गीता के वो ज्वेलरी है, इसलिए उसको संभाल कर रखा गया है। तो ये हमें यहां से देखने को मिलता है इस एग्जाम्पल के द्वारा। हालांकि भगवद गीता के सारे अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो बीच के 6 अध्याय हैं ये भगवान के भक्ति योग है और भगवान को विशेष प्रिय है। अभी हम गीता महात्म्य के बारे में चर्चा करते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयता पुमान विष्णु पदम आप्नोति भया शोकादिवर्जितः। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवद गीता को आप सुन पा रहे हैं, भगवद गीता को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। यह गीता महात्म्य का पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक, गीताध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसंति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता को निष्ठा से और गंभीरता से पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूरे जो पहले के दुष्कर्म हैं, जो उसने पाप कर्म किए हैं, उनके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल गीता को निष्ठापूर्वक पढ़ने से, गंभीरतापूर्वक पढ़ने से। यहां पे एक और चार्ट दिया हुआ है, किसको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। दी यंग, जो छोटे लोग हैं उनको क्यों पढ़नी चाहिए भगवद गीता, कैसे जीवन जिया जाए उसके लिए। जो बूढ़े हैं उनको क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे मरा जाए उसके लिए। जो इग्नोरेंट है, यानी कि जो नास्तिक लोग हैं या तामसिक लोग हैं, उनको विजडम के लिए, यानी ज्ञान के लिए। जो ज्ञानी हैं उनको कैसे विनम्र बनना चाहिए उसके लिए। जो अमीर हैं उनको दया के लिए। जो सपने देखते हैं उनको इंचैंटमेंट के लिए, उन सपनों को प्राप्त करने के लिए। और जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनकी काउंसलिंग के लिए। जो कमजोर लोग हैं उनको स्ट्रेंथ के लिए। जो स्ट्रांग हैं उनको डायरेक्शन, सही डायरेक्शन पता करने के लिए। जो हम्बल हैं उनको एग्जाइटेशन के लिए चाहिए। जो वेरी हैं उनको रेस्ट के लिए चाहिए। जो ट्रबल्ड हैं उनको शांति के लिए चाहिए। जो डाउटिंग है जिनके मन में रहता है उनको एश्योरेंस के लिए। और जो पापी हैं उनको सालवेशन, मुक्ति के लिए। जो ज्ञान प्राप्त, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको मोक्ष के लिए। और मनुष्यों को गाइडेंस के लिए ये भगवद गीता पढ़नी चाहिए। चलिए भगवद गीता का अन्य महात्म्य, मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीताम स्नानम संस्कार। गंगा में स्नान करके कोई व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भवसागर को पार कर जाता है। भवसागर यानी कि जो जीवन मृत्यु का हमारे जो चक्र है उससे वो निकल जाता है। चौथा गीता महात्म्य, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म्या विदिनी श्रुतः। भगवद गीता भगवान के मुख कमल से निकली है, इसलिए किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। व्यक्ति को केवल भगवद गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, इसलिए छोटी सी बुक केवल 700 श्लोक, इसका अध्ययन करना ही सारे अध्ययन के बराबर माना जाएगा। भारतामृतम सर्वस्वम विष्णु वक्त्राब्दिना श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता है। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाया है। गंगा जल पीने वाले को मुक्ति मिल जाती है, जो कि भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ है गंगा जल। तो भगवद गीता तो भगवान के मुख कमल से निकली है, उसका क्या कहा जाए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक गीता महात्म का, 6 नंबर का श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। बोलते हैं जो गीतोपनिषद है, जो भगवद गीता है, ये सारे उपनिषदों का सार है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। और ये किसके तुल्य है, एक गाय के तुल्य है। एक गाय जैसे होती है वैसे ही सारे वैदिक शास्त्र हैं। और गाय का सार क्या होता है, दूध। तो जिस तरीके से दूध गाय का सार है, ऐसे ही सारे वैदिक सारे वैदिक जो लिटरेचर है उसका सार है भगवद गीता। अभी गाय दूध कब देती है, जब बछड़ा उसको पहले पीता है। तो बछड़ा है अर्जुन, और जो ग्वाला है जो दूध निकालने वाला है वो कौन है, वो भगवान कृष्ण है। और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त जो हैं वो जो बाद में बछड़े के पीने के बाद जो दूध बचता है उस दूध को पान करने वाले हैं, उस अमृत में दूध को पान करने वाले हैं। सर्वोपनिषदो गा, वो सारे उपनिषद गाय के बराबर है। दोग्धा गोपाल नंदना, ग्वाला कौन है, कृष्ण। पार्थो यानी कि अर्जुन, वत्स सुधीर भोक्ता, पार्थ अर्जुन जो है वो बछड़ा है, और सुधीर भोक्ता अमृत में दूध का पान करने वाले कौन है, वो सुधीर भोक्ता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवो, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अभी कलयुग में खास करके एक ही शास्त्र की बात की जाती है, तो कौन सा शास्त्र, सारे शास्त्रों में कौन सा शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, देवकी पुत्र गीतम यानी कृष्ण का जो गीत है। एको देवो देवकी पुत्र एवो, एक देव कौन, मेन देव कौन है, तो देवकी पुत्र है वो जो भगवान कृष्ण है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, मंत्र भी एक होना चाहिए, क्या है वो मंत्र, भगवान के नाम। हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कर्म होना चाहिए, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, क्या कर्म होना चाहिए, उस भगवान की सेवा करना, ये हमारा कर्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना भगवद गीता महात्म्य के बारे में, कि भगवद गीता कितनी महत्वपूर्ण है हमारी वैदिक संस्कृति के लिए। भगवद गीता का संक्षिप्त विवरण हम लोग पढ़ते हैं। भगवद गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं वो हमको बताते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। पहले अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है, कुछ अर्जुन को डाउट होता है कैसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो संशय में आ जाता है, और भगवान दूसरे अध्याय से उत्तर देना शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 अध्याय तक भगवान उत्तर देते हैं। तो जहां पर हम सीखने को पाएंगे कि कर्म कैसे किए जाते हैं, किस तरीके के कर्मों को करना चाहिए, और 7 से 12 पता चलता है कि कर्म किसके लिए करना चाहिए। 7 से 12 में हमें पता चलता है कि कर्म जो है वो भगवान के लिए करना चाहिए। और उसके बाद 13 से 18 में हम जानते हैं कि भौतिक जगत में रहते हुए किस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 18 अध्याय में भगवद गीता पूरी विभाजित है। चलिए भगवान हरि का नाम लेके हम लोग भगवद गीता प्रारंभ करते हैं। ये जो श्लोक यहां पे लिखा हुआ है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा निवेदन है मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। ये भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जितना मैं बोलूं उतना ही आप लोगों को बोलना है। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। ठीक है, म्यूट कर लीजिए आप लोग। संजय से प्रश्न है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र राजा हैं और अंधे हैं, तो इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा था तो व्यास देव ने कहा, धृतराष्ट्र मैं तुमको तुम्हारी आंखें प्रदान करता हूं, ये जो तुम जिस युद्ध के कारण हो उस युद्ध को तुम खुद देखो, किस तरीके से तुम्हारे पुत्र मारे जाएंगे तुम खुद अपनी आंखों से देखो। धृतराष्ट्र ने कहा, नहीं 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 आप कृपया मुझे मत, ऐसा मत करिए, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो धृतराष्ट्र को व्यास जी ने कहा, ठीक है मेरा जो शिष्य है संजय उससे महाभारत युद्ध में कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, वो सब कुछ देख पाएगा, उसको मैं ऐसी शक्ति प्रदान करता हूं और वो तुमको पूरी महाभारत सुनाएगा। तो ये संजय जो है ये दुर्योधन के पक्ष से यानी कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं, और 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के बाद जब भीष्म पितामह उनका सरसैया पे गिर गए हैं, तब संजय जो है वापस आते हैं धृतराष्ट्र के पास, और धृतराष्ट्र को वो पूरा सुनाते हैं तब तक की स्टोरी जब तक कि भीष्म जो है वो सरसैया पे गिरते हैं। तो जैसे ही धृतराष्ट्र के पास ये खबर मिलती है कि भीष्म गिर गए हैं, तो तुरंत धृतराष्ट्र यह प्रश्न पूछता है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम काः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। वो पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र क्या है, वो धर्म का क्षेत्र है, वहां पे समवेतायुत्सव युद्ध करने के इच्छा से हमारे पुत्र इत्यादि वहां पे इकट्ठे हुए हैं। और देखिए यहां पे उसकी चालाकी, उसने अपने को और पांडवों को अलग अलग कर दिया। माम काह, मेरे पुत्र, मेरे कितने पुत्र हैं, 100 पुत्र जो है मेरे, और पांडवाश्चैव, और जो पांडव हैं, 5 पांडव हैं, उन लोगों ने किम अकुर्वत, उन्होंने वहां पे, हे संजय, वहां पे क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे ये बताओ। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र प्रश्न पूछता है। यहां पे 4 चीजें ध्यान देने योग्य है ये प्रश्न पूछने का कारण। सबसे पहले उसके अंदर इच्छा, वो जानना चाहता है कि वहां पे वास्तव में हुआ क्या। आपको मैं बताऊं, हर दिन भीम जो है धृतराष्ट्र के 8, 10, 15 और कभी कभी तो 20 लड़कों को मार देता था। और ये भी 10 दिन हो चुके हैं तो ऑब्वियस बात है वो 50-60 बच्चे मारे जा चुके हैं धृतराष्ट्र के। फिर भी धृतराष्ट्र इतना जो है चिपका हुआ है अपनी राजगद्दी से, वो युद्ध करवाना बंद नहीं करता है। वो एक दिन चाहता, अगर वो एक आदेश देता तो युद्ध बंद हो जाता। दुर्योधन को भी मानना पड़ता, युधिष्ठिर को भी मानना पड़ता, हर किसी को मानना। लेकिन धृतराष्ट्र जो दृढ़ता से राष्ट्र को पकड़े हुए है, उस व्यक्ति का नाम है धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र अपनी गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता था। आपको बता दूं, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जब युधिष्ठिर महाराज जीत गए, लेकिन धृतराष्ट्र अपने राजगद्दी से हटा नहीं, वो बैठा रहा राजगद्दी पे, वो अंत तक बैठा रहा। बाद में जब विदुर जी आए और धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, तब धृतराष्ट्र उनके साथ चला गया और फिर युधिष्ठिर जो है वो उनका राजाभिषेक हुआ। तो ये धृतराष्ट्र इतनी दृढ़ता से राष्ट्र को पकड़ा हुआ था, ये जानना चाहता है। वास्तव में इसको फर्क नहीं पड़ता इसके बच्चे मारे जाएं या जिए, उसको है कि उसका गद्दी जो है छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए वो इच्छुक है जानने का कि वहां पे क्या हुआ, क्योंकि अगर एक बार को पांडव जीत जाएंगे तो हो सकता है राज्य की गद्दी मुझसे छीन ली जाए। कौरव बैठेंगे तो मैं जिंदा हूं तो मैं राज्य करूंगा ही। तो इसलिए पहला उसका इच्छा है। दूसरा संशयात्मक, उसको संशय है। क्या संशय है? ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म का क्षेत्र है। यहां धर्म जैसे कुछ जगह होती हैं जो धार्मिक जगह होती हैं, वहां पे कोई जाता है तो अपने आप धार्मिकता उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ये धृतराष्ट्र सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरे पुत्र जो है वो जब वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी धर्म का आवरण हो जाए और वो बोले अरे युद्ध करने छोड़ो, चलो आधा राज्य जो है पांडवों को दे देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए उसको बहुत संशय है। तीसरा वो भयभीत है, क्योंकि उसको पता भी चल गया है कि उसके पुत्र मारे जा चुके हैं कुछ, हाँ ये भी कारण है, और साथ साथ में राजगद्दी जाने का बहुत बड़ा भय है उसके पास। तो इसलिए वो भयभीत भी है। और चौथा वो आशावान है। वो क्या आशावान है? वो चाहता है कि ये राज्य जो है वो बना रहे उसके पास, राज्य जो है उसके पास ही रहे, उसके पास से कहीं और ना चला जाए। तो ये 4 चीजें यहां पे जानने योग्य हैं। चलिए यहां पे एक शिक्षा है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कोई आप लोगों में पढ़ी है इसको? कोई पढ़िए।
ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनीतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है।
बिल्कुल। तो एक तरफ भगवान उपस्थित हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है, कूटनीति जो दिखाता है और भौतिक विशेषज्ञताएं भी हैं, ये कौन है? ये दुर्योधन है। तो भगवान की उपस्थिति यानी कि जो भगवान को मानने वाले व्यक्ति हैं वो लाख गुना श्रेष्ठ हैं अन्य किसी भी चीज में कोई एक्सपर्ट हो सकता है उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता चलेगा जब दुर्योधन जो है वो बात करता है द्रोणाचार्य से। जब इस प्रकार संजय जो है धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो तुरंत धृतराष्ट्र को संजय बताना शुरू करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर, जैसे ही संजय ने पूछ संजय से पूछा गया कि मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो सबसे पहले संजय बताएंगे कि आपके पुत्रों ने क्या किया, यानी कि दुर्योधन ने क्या किया। पांडवों की सेना को देखने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सबके पास भगवद गीता भी होगी, आपके हाथ में ही होगी और आप भगवद गीता के श्लोकों को देख रहे होंगे, ये मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। पांडवों की सेना को देखने के बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य के पास जाके उसने ये श्लोक बोले, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्या महतीम चमुम वीरम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद और दुर्योधन, द्रुपद और द्रोणाचार्य में कुछ युद्ध था, कृपया अपने को म्यूट कर लीजिए। द्रुपद और द्रोणाचार्य में कुछ युद्ध था, तो द्रुपद ने द्रौपदी और धृष्टद्युम्न इन दोनों को उत्पन्न किया था एक यज्ञ के द्वारा, और धृष्टद्युम्न को खास करके इसलिए उत्पन्न किया था कि वो द्रोणाचार्य को मार सके। तो यहां पे दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य की गलती बताते हुए कहता है, आपको पता था कि धृष्टद्युम्न जो है वो इसीलिए पैदा हुआ है कि आपको मारेगा, लेकिन आप इतने मूर्ख हो कि आपने उसको भी उपदेश दिया, आपने उसको भी शिक्षा दिया, आपने उसको भी शस्त्र विद्या सिखाया। अभी आजकल संसार में ऐसा संभव नहीं, लेकिन तब का जो स्टैंडर्ड था वो देखिए। द्रोणाचार्य को पता था कि ये धृष्टद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी उसको शस्त्र विद्या जो है किसने सिखाया, द्रोणाचार्य ने ही सिखाया। और दुर्योधन यहां पर अपने गुरु द्रोणाचार्य की ही गलती बता रहा है, कह रहा आपने ऐसा किया, यह आपकी गलती है। और उसके बाद दुर्योधन बताना शुरू करता है 4 नंबर श्लोक से लेकर 11 नंबर के श्लोक तक कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन योद्धा है। अत्र सुराम है स्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो इस बीच में कई सारे श्लोकों को जो है अर्जुन दुर्योधन जो है वो बोल रहा है, और बीच में क्या होता है, वो द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता है। कारण क्या है इसका, जिससे असल में भीष्म जो है वो उसके सेनापति हैं, दुर्योधन की सेना के सेनापति हैं भीष्म, लेकिन ये दुर्योधन भीष्म के पास न जाके ये जाता है द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण है, तो ये जानता है कि अगर मैं द्रोणाचार्य के पास जाऊंगा तो भीष्म भी क्रोधित नहीं होंगे और द्रोणाचार्य को भी लगा कि मुझे भी वैल्यू दी जा रही है, इसलिए जानबूझ के वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। अभी पांडवों की सेना को इतने अच्छे तरीके से देख के इसके मन में डाउट होता है कि मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, इतना डर जाता है उस सेना को देख के, इसलिए वो द्रोणाचार्य को क्रोधित करना चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो आप ढीले पड़ जाए युद्ध करने में, इसलिए युद्ध में आप ढीले मत पड़िएगा। तो बताना शुरू करता है कि हमारे उनकी सेना में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भीम और अर्जुन के बराबर युद्ध करने वाले हैं, उनके जैसे ताकतवर हैं, ये युधान विराट द्रुपद इत्यादि। और उसके बाद बोलता है, दृष्ट के तुश्चे कितान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवा। ये सारे लोग जो हैं धृष्टकेतु चेकितान काशीराज और बहुत शक्तिशाली हैं, पुरुजित है, कुंती भोज है, सैभ्य हैं, ये सब मानव समाज के वीर हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं ये लोग। तो इनके बारे में डिटेल यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके बारे में इतना चर्चा नहीं करेंगे। ये सब लोग राजा थे, बड़े महान महान राजा थे, और अभी जो है युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। अभी अर्जुन दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से आगे बताता है, अभी उसने सामने की सेना के बारे में बताया कि वहां पे कितने महान महान लोग हैं। अब दुर्योधन बताता है अपनी सेना के बारे में, भगवद गीता 1.7, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि हमारी सेना जो है वो कम नहीं है कोई, हमारी सेना को संचालित करने में कई सारे लोग हैं जो बहुत निपुण हैं। अगला श्लोक, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान हमारी सेना में स्वयं आप हैं, और उसके बाद नाम लेता है भीष्म का। अब देखिए यहां पे भीष्म जो है सेनापति हैं। अगर द्रोणाचार्य इतने ही महत्वपूर्ण है तो द्रोणाचार्य को सेनापति बनाना चाहिए, नहीं। दुर्योधन ने जानबूझ के भगवान शब्द यूज किया क्योंकि वो ब्राह्मण है। अगर उनको बाद में नाम यूज करेगा तो वो बुरा मान सकते हैं, इसलिए पहले उनका नाम यूज करके आप बहुत महान है, आप हैं भीष्म हैं, और भगवान भीष्मश्च आपके और भीष्म के अलावा और भी लोग हैं। कौन? कर्ण, कर्ण भी है, और कृपश्च समितिंजया, कृपाचार्य भी हमारी तरफ है। ऐसे लोग जो कभी भी संग्राम में हारे ही नहीं है, हमेशा जीतते हैं। अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा भी हमारी तरफ है, अश्वत्थामा अमर है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, और साथ साथ में विकर्ण भी हमारी तरफ है। अब ये विकर्ण कौन है? विकर्ण वास्तव में दुर्योधन का ही एक भाई है। दुर्योधन 100 भाई थे, उसमें से विकर्ण, विकर्ण को इतना महान नहीं था, लेकिन विकर्ण वो व्यक्ति था जब द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था तो इस व्यक्ति ने ही उस तरफ से वो अगेंस्ट में हुआ था कि यह गलत हो रहा है। केवल विकर्ण ही ऐसा था जो इसने बोला था कि यह गलत हो रहा है, और किसी ने भी यह बोला नहीं था कि गलत हो रहा है। तो विकर्ण भी हमारी तरफ है, यानी वो दूसरे पक्ष में जा सकता था लेकिन वो गया नहीं है, वो हमारी तरफ ही है। और साथ साथ में सोमदत्त का पुत्र भी हमारी तरफ है। ये लोग कभी भी युद्ध हारे नहीं, हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। ओके। अन्य च बहवा श्रूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य भी बहुत सारे वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। अब यहां से एक बात क्लियर हो रही है क्या? कि अभी ये सारे लोग मार दिए जाएंगे, क्योंकि वो यहां पे जीवन त्याग करने के लिए ही आए हैं। दुर्योधन के मुख से ये बात निकल गई। और नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, वो बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित हैं, बहुत सारे हथियारों को रखते हैं, और युद्ध विद्या में तो क्या कहना, बहुत निपुण है। अभी अगले श्लोक में, 10 नंबर श्लोक में दुर्योधन बोलता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमा विरक्षितम। हमारी सेना अपर्याप्त है, बहुत है, क्योंकि हमारी सेना भीष्म के द्वारा रक्षित है, लेकिन भीम की सेना जो है वो जो दूसरी सेना है वो केवल वो भीम के द्वारा रक्षित है। भीम कोई इतना महान थोड़ी है, उसकी सेना केवल पर्याप्त है। दो अर्थ है यहां पे, अपर्याप्त मतलब अपर्याप्त बहुत, और पर्याप्त मतलब कम, एक अर्थ ये होता है। दूसरा अपर्याप्त का अर्थ है हमारी सेना पर्याप्त नहीं है, यानी कि कम पड़ जाएगी, और उनकी सेना पर्याप्त है। दो अर्थ निकलते हैं यहां पे। तो वास्तव में अर्जुन दुर्योधन कहना तो चाहता है कि हमारी सेना ज्यादा है क्योंकि हम 11 अक्षौणी सेना हमारे पास है, उनके पास 7 अक्षौणी सेना ही है, लेकिन कहे वो सच बात जाता है कि हमारी सेना उनसे युद्ध करने में अपर्याप्त है, उनकी सेना पर्याप्त है युद्ध करने में। क्यों? क्योंकि वो भीम के द्वारा रक्षित है। दुर्योधन भीम से इतनी घृणा करता था, इतनी घृणा करता था, वो जानता था कि अगर मैं मारा भी जाऊंगा तो भीम के द्वारा ही मारा जाऊंगा, तो भीम से बहुत घृणा करता था। इसीलिए उस सेना का सेनापति भीम नहीं था। किसी को पता है उस सेना का सेनापति कौन था? हाँ, धृष्टद्युम्न जी, धृष्टद्युम्न, यस। तो सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, लेकिन दुर्योधन तुलना किससे करता है? भीमा भी रक्षितम, भीम के द्वारा वो रक्षित है सेना। तो इस तरीके वो अपने अंदर ये जो भीम के प्रति उसकी ईर्ष्या है उसको छुपा नहीं पा रहा है। यहां पे एक शिक्षा और है, कोई पढ़िए इसको। कोई पढ़िए।
जहां कृष्ण है वही विजय निश्चित रूप रहती है।
हाँ, जिधर भगवान रहते हैं उधर विजय रहती है। भगवान किधर रहते हैं? जिधर धर्म होता है उधर भगवान रहते हैं, और जिधर भगवान रहते हैं उधर विजय निश्चित है। तो इस तरीके से जब दुर्योधन अपनी सेना का गुणगान कर रहा था तो भीष्म देव ने सोचा ये बहुत बकबक कर रहा है, बहुत बोल रहा है, फालतू बात कर रहा है, चलो अभी युद्ध को शुरू कर दिया जाए जिससे ये बकवास बंद करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह ने, उन्होंने एक शंख बजा दिया। अपना शंख बजा दिया। शंख जैसे ही उन्होंने बजाया तो सारी सेना को लगा अभी तो युद्ध शुरू हो गया। तो पांडवों की सेना में और कौरवों की सेना में दोनों सेनाओं में शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, मृदंग बजने लगे, जितने भी वो वाद्य यंत्र लेके आए थे सब बजने लगे, तुर्की बजने लगी। 12-13 नंबर श्लोक में शंख बजने के बारे में वर्णन है, ये शंख वर्णन है जो दुर्योधन की सेना में। अभी 14 नंबर श्लोक, ततः स्वेतर है युक्ति महति संदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। जब उन लोगों के शंखों के बारे में वर्णन किया गया तो बोला गया उन्होंने केवल शंख बजाए, लेकिन जब वर्णन किया गया कि पांडवों की तरफ से शंख बजे तो वर्णन किया गया दिव्यो शंखो, उनके शंख कैसे हैं, दिव्यो शंखो, उनके शंख जो हैं दिव्य हैं। और ततः स्वेतेर है युक्ते, उस समय सफेद घोड़ों से युक्त जो रथ था उस पर बैठे हुए माधव पांडव चैव, कृष्ण बैठे हुए हैं और पांडव यानी कि अर्जुन बैठे हुए हैं, और भी अन्य सारे रथों पे कई अन्य पांडव बैठे हुए हैं, उनपे कई सारे लोगों ने शंख बजाने शुरू किए। किसने कौन सा शंख बजाए ये यहां पे वर्णन है, कोई पढ़िए कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, दिख रहे हैं आप लोगों को?
कृष्ण ने पंचगण ने शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, भीम ने पौंड, नकुल ने सगोश, सहदेव ने मणिपुष्प।
हाँ, ये 5 पांडव और कृष्ण ने जो शंख बजाया उनके बारे में बताया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, 5 जन्य नाम का शंख बजाया कृष्ण ने। देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। अनंत विजयम राजा, युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। पौंड्रम भीम कर्म अवृकोदरः, पौंड्र नाम का शंख जो है भीम ने बजाया। नकुलो सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको, नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। ये सारे शंखों को बताया गया है दिव्य शंख बजाए गए। अब यहां पे 19 नंबर श्लोक, 15 से 18 नंबर श्लोक में इन शंखों का वर्णन है। 19 नंबर श्लोक में बताया गया है कि इन शंखों का जो घोष था, जो आवाज हुई, उसको सुन के जो कुरुओं का जो दल था उनका हृदय चकनाचूर हो गया। उनको इतना डर लगने लगा, रे बाप इतना भयंकर गर्जन हो रहा है शंख का, लग रहा है हमारी हार तो निश्चित ही है। तो 19 नंबर श्लोक में आता है कि उन लोगों का हृदय जो है चकनाचूर हो गया। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानी विदारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन। विभिन्न शंखों की ध्वनि जो है बहुत कोलाहलपूर्ण बन गई और आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करने लगी। शंख बजता है तो कितनी सुंदर आवाज होती है, वैसे ही पूरे आवाज होने लगी और जो पांडव लोग थे उनको हृदय को शीतलता प्रदान कर रही थी, और जो कुरु थे उनके हृदय को क्या होने लगा, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी, उनको डर बैठ गया उनके मन में। अभी 20 नंबर श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं माह महीपते। अर्जुन जिस रथ को चला रहा है, जिस रथ पे सवार है, उसको भगवान कृष्ण चला रहे हैं, उसके सारथी हैं भगवान कृष्ण, और साथ साथ में उस रथ पे एक ध्वजा टंगा हुआ है सबसे ऊपर, उसको देख के पता चल जाता है कि ये किसका रथ है, और उस ध्वजा पे स्वयं हनुमान जी अंकित हैं। तो ऐसे में अर्जुन ने जब देखा इतना सुघोष हुआ, इतना बड़ी आवाज हुई, तो अर्जुन ने अपना धनुष और बाण निकाल लिया और धनुष पे बाण को रखा और तीर चलाने के लिए उद्यत हो गया। अभी वो तीर चलाने ही जा रहा है, लेकिन उसके जस्ट पहले ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, जब उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा तो उसने अर्जुन ने कृष्ण से ये शब्द कहे, क्या कहा, चलिए यहां पे अगली शिक्षा है पढ़िए।
अर्जुन जैसे महान पराक्रमी योद्धा और कृष्ण भक्त ने क्यों धनुष त्याग कर युद्ध लड़ने से मना कर दिया?
ये शिक्षा हम लोगों को 27 नंबर श्लोक से लेके इस अध्याय के अंत तक मिलेगी। अभी हमने देखा कि अर्जुन बिल्कुल तैयार है युद्ध करने के लिए। ऐसा क्या हुआ जिससे अर्जुन ने बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जानते हैं। चलिए 20 नंबर श्लोक में अर्जुन किस तरीके से बाण चलाने के तत्पर है। 21 नंबर श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, रथम स्थाप्य में अच्युता सेन योरुर्भयोर मध्ये, रथम स्थाप्य में अच्युता, हमारे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। किससे कहता है? भगवान कृष्ण से। अब भगवान कृष्ण जो है, यहां पे हमें समझना पड़ेगा भगवान कृष्ण की स्थिति को। यहां पे भगवान कृष्ण का नाम इस श्लोक में यूज किया गया है, अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है अचूक, जो अपने पद से कभी भी गिरते नहीं है उनका नाम है अच्युत। भले ही भगवान अभी सारथी बने हुए हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉय बने हुए हैं, लेकिन भगवान भगवान ही हैं। भगवान अभी अर्जुन जैसा बोल रहे हैं, भगवान वैसा ही कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने स्नेहवान है, इतना प्रेम करते हैं कि भगवान कुछ भी करने को तैयार है। तो यहां पे अर्जुन का रथ हांक रहे हैं भगवान। और एक चीज ऐसी है जिसमें भगवान कभी भी अपनी बात से च्युत नहीं होते, वो है अपने भक्तों की रक्षा करना। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान इसमें कभी भी चूकते नहीं हैं। अर्जुन कहता है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। 24-25 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं और ठीक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करते हैं जहां पे ठीक सामने भीष्म पितामह हैं, ठीक सामने द्रोणाचार्य हैं और दुर्योधन इत्यादि अन्य भाई भी हैं। भगवान और भगवान के जो सेवक हैं उनके बीच में संबंध जो होता है बहुत मधुर होता है, बहुत दिव्य होता है। भगवान का जो सेवक होता है वो भगवान की सेवा करना चाहता है कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न करूं, भगवान की सेवा किस प्रकार करूं, और उसी तरह भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने का अवसर खोजते रहते हैं। यह संबंध केवल भगवान और भगवान के भक्तों में होता है, यह संबंध किसी देवी देवताओं में नहीं पाया जाता। आप किसी भी देवी देवता की उपासना में वो ऐसा नहीं करते, केवल भगवान ही अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं। ये भगवान का अपने भक्तों से विशेष संबंध है। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन के रथ को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां उसके सामने द्रोणाचार्य हैं जो कि उसके गुरु हैं, जहां पे उसके सामने भीष्म पितामह हैं जो उसके दादाजी हैं। जब उसके पिताजी मर गए थे और ये लोग बहुत छोटे छोटे थे, ये दादाजी ने ही उसको प्रेम दिया है, उन सबको रक्षा प्रदान किया है, ऐसे दादाजी उसके सामने खड़े हैं और अन्य बहुत सारे भाई खड़े हैं। अब क्या हुआ? तान समीक्ष सकौंतेया सर्वान बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नम इदम ब्रवीत। उन सबको अपने सामने देख के अर्जुन भाव विवल हो गए। अरे भाई ये क्या, अगर मुझे जीतना है तो इन लोगों को मानना पड़ेगा, मेरे दादाजी को मानना पड़ेगा, मेरे गुरु को मानना पड़ेगा, मेरे भाइयों को मानना पड़ेगा। अर्जुन बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए। अभी अर्जुन युद्ध ना करने के कारण बताता है। अभी अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद भगवत गीता है, तो पहला चैप्टर जो है वो वास्तव में अर्जुन की गीता है और दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान की गीता है। पहले अध्याय में अर्जुन कारण बताता है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए हम उन सारे कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला कारण अर्जुन बताता है दया। अर्जुन को अपने संबंधियों के प्रति दया आ रही है कि ये मार दिए जाएंगे बेचारे, हाँ इनकी सबकी गलती नहीं है, कुछ लोगों की गलती है, लेकिन सब मार दिए जाएंगे। पहला कारण। दूसरा कारण अर्जुन बताता है कि हम भले ही जीत क्यों ना जाएं, हाँ लेकिन हम आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनके लिए हम जीतने जा रहे हैं वो सब तो मर जाएंगे, अभी उनके पक्ष में भी लोग मरेंगे, हमारे पक्ष में भी लोग मरेंगे। कोई व्यक्ति अपने घर पे कुछ खरीद के लेके आता है तो चाहता है कि पूरा परिवार उसको एंजॉय करे, लेकिन परिवार वाले ही मर जाएंगे तो फिर कैसे एंजॉय होगा। तीसरा कारण अर्जुन बताता है कि मुझे पाप लगेगा, जब मैं किसी को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। और चौथा कारण अर्जुन बताता है कि पारिवारिक वंशावली नष्ट हो जाएगी, इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। और लास्ट कारण असमंजस, अर्जुन डिसाइड नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पांच कारण यहां पे गिनाए जाते हैं। अर्जुन वाच दृष्टवे मम सजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोम हर्षस्य जायते गांडीवते सनस्ते हस्तात् त्यक्त्वैव परिदह्यते। 29 नंबर श्लोक। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। अर्जुन बोलता हे कृष्ण, इन लोगों को देख के मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये जो गांडीव धनुष है जिससे मैंने बड़े बड़े लोगों को हराया है ये मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं खड़ा रह पाने में असमर्थ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, मैं सब कुछ भूल रहा हूं, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अर्जुन पांडवों की सेना का सबसे मुख्य योद्धा, अर्जुन सबसे इंटेलिजेंट युद्ध करने वाला, अर्जुन ना हो तो हार जाए ये स्थिति, और उसकी हालत क्या है, उसके शरीर के अंग कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव छूट रहा है, और तो और हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। अरे हम जानते हैं, वो लोग भले ही नहीं जानते कि इससे पाप हो रहा है, वो लोग नहीं जानते कि अरे क्या होगा आगे, लेकिन हम तो देख सकते हैं, हमको तो दिख रहा है अमंगल होने जा रहा है, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, 65 करोड़ लोग मरने वाले हैं, 65 करोड़ लोग, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, हमको तो दिखाई दे रहा है, हम क्यों ऐसे युद्ध में प्रविष्ट हों, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो पहला कारण दया, अर्जुन को दया आ रही है, अपने सब जो साथ के उसके लोग हैं उनके ऊपर दया आ रही है कि उनको मरना पड़ेगा अगर अर्जुन को जीतना है तो, और अगर अर्जुन हारेगा भी तो अर्जुन के पक्ष वालों को मरना पड़ेगा, यानी मरना तो पड़ेगा, कई सारे लोगों को मरना पड़ेगा। चलिए दूसरा कारण, पहला कारण मैंने बताया दया, दूसरा कारण भोग, भोग नहीं कर सकते, विजयी भी हो भी जाएंगे तो भी आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। न च श्रेयोनुपश्यामी हत्वा स्वजन महवे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामी, मुझे कुछ श्रेय नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे तो विजय की भी इच्छा नहीं रह गई, न च राज्यम, राज्य की भी इच्छा नहीं रह गई, सुख की भी इच्छा नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि सुख व्यक्ति किसके साथ बांटता है, अपने परिवार के साथ बांटता है, और परिवार वाले ही खत्म हो जाएंगे, मेरे भाई मर जाएंगे, मेरे दादाजी मर जाएंगे, मेरे गुरुजी मर जाएंगे, मैं किसके साथ सुख बांटूंगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, मुझे कुछ भी श्रेय, मुझे कुछ भी श्रेयस्कर नहीं दिखाई दे रहा है। 32 से 35 नंबर श्लोक में अर्जुन बताता है कि संबंधियों के बिना हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा कारण पाप कर्म, हम इनको मारेंगे तो हमको पाप लगेगा। 36 नंबर का श्लोक, अर्जुन बोलता है, कहता है ये लोग आतताई हैं, आतताई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, हाँ, किसी को मार देना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, किसी का धन छीन लेना, ऐसे लोग, हम अगर इनको मार भी देते हैं तो भी हमको पाप लगेगा, ऐसा अर्जुन बोलता है कृष्ण को। अर्जुन 37वें 38वें नंबर श्लोक में बोलता है कि ये तो लोभी लोग हैं, ये दोष नहीं देख सकते, लेकिन हम तो देख सकते हैं, हम तो समझदार लोग हैं, हमको तो दिखाई दे रहा है कि इतना गलत होने जा रहा है, इतने सारे लोग मर जाएंगे, ये गलत है। और चौथा कारण अर्जुन बताता है कि परिवार को नष्ट करने से क्या होगा, जब इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध में तो सब पुरुष लोग आए हुए हैं और सारे पुरुष मार दिए जाएंगे तो क्या होगा, कुल का क्षय हो जाएगा, कुल खत्म हो जाएगा, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म, जब कुल का क्षय हो जाएगा तो कुल धर्म भी प्रणश्यन्ति, कुल में जो धर्म चल रहा है, जो पारिवारिक परंपराएं चल रही है, रीति रिवाज चल रहा है, हाँ ये यज्ञ करो, ये पूजा करो, इस दिन ये करो, ये संस्कार करो, ये सब नष्ट हो जाएंगे। अभी जब पुरुष मर जाएंगे, बूढ़े लोग मर जाएंगे, एजेड लोग खत्म हो जाएंगे, तो नई जनरेशन का डायरेक्शन देने वाला कौन रहेगा, अर्जुन कह रहा है प्रणश्यन्ति कुल धर्मा, और उससे क्या होगा, जब धर्म खत्म हो जाएगा तो कौन बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म अभिभवतः, अधर्म बढ़ेगा, अधर्म बढ़ना मतलब, अब देखिए क्या होगा, सारे पुरुष मर जाएंगे, घर में केवल स्त्रियां रह जाएंगी, और जब स्त्रियां रह जाएंगी तो प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः, जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि उनको कोई दूसरे लोग आकर भोगेंगे। और जब ऐसा होगा कि नीच लोग जो हैं उन स्त्रियों का भोग करेंगे तो उससे क्या होगा, वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर जब जाति के मिश्रण से जो अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं उसको वर्ण संकर बोला जाता है। तो वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर होने से तीन चीजें होंगी। पहला, नरकोप, जो परिवार के लोग हैं, जो पुरखे हैं, जो पितर लोग हैं, पितरो नरको व्यासो, जो पितर हैं वो नरकीय जीवन जिएंगे, परिवार और संस्कारों को नष्ट करने वाले को नारकीय जीवन प्राप्त होता है। और साथ साथ में पतंति पितरो, जो पितर लोक में चले गए हैं उनका क्या होगा, वो पतित हो जाएंगे, वो गिर पड़ेंगे, क्योंकि उनको जल देने वाला, पिंडदान करने वाला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जो वर्ण संकर पैदा होंगे, जो मिश्रित संतानें पैदा होंगी, उनको तो पड़ी नहीं रहेगी, हमारे पुरखे कौन है, हमारे परिवार के कौन है, वो सब छोड़ देंगे, वो सब इनको नहीं करेंगे, और उससे क्या होगा, पितर भी उनका भी पतन हो जाएगा। उत्साहदंते जाति धर्मा कुल धर्मा, साथ साथ में जो भी सामुदायिक योजनाएं चल रही हैं और जो भी पारिवारिक कल्याण कार्य हैं वो भी विनष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अर्जुन चौथा कारण बताता है कि अगर इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। हे कृष्ण, मैं ये सब देखना नहीं चाहता हूं। अभी अर्जुन जो है क्या करता है, अपने धनुष और बाण को, जो कि उसने तैयार कर दिया है चलाने के लिए, उसको बाजू में रख देता है। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्था उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एव मुक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत, अर्जुन खड़ा नहीं रह पाया रथ के ऊपर और बैठ गया। विसृज्य ससरम चापम, अपने ससर और चाप यानी अपने धनुष और बाण को उसने किनारे रख दिया और शोक संविघ्न मानसः, शोक से संविघ्न हो गया। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दयालु है और कोमल हृदय है और भगवान की सेवा में रत है, वो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में कोमल हृदय व्यक्ति जो कि देख पा रहा है कि गलत हो रहा है, वो आत्मज्ञान पाने के लिए योग्य व्यक्ति है। और आत्मज्ञान अभी कौन देगा, भगवान कृष्ण आत्मज्ञान उसको दूसरे अध्याय में देना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से पहला चैप्टर यहां पे समाप्त होता है, जहां पे हमने जाना कि शुरू के श्लोकों में किस तरीके से धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न पूछा और संजय उनका उत्तर देना शुरू करता है। सबसे पहले संजय बताता है कि दुर्योधन ने क्या किया। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से संवाद करता है। बाद में सब लोग शंख बजाने लगते हैं। शंख बजाते बजाते ऐसा शंख बजता है पांडवों की तरफ से कि कौरवों के पुत्रों, जो कौरव हैं, उनका हृदय विदीर्ण होने लगता है। और उसके उपरांत अर्जुन कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के बाद अर्जुन अपनी सेना को देखता है और सामने की सेना को देखता है, अपनी सेना के लोगों को देखता है कि मेरे भाई खड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, भीम खड़े हैं, और सामने की सेना को भी देखता है कि अरे यहां तो भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, दुर्योधन इत्यादि अन्य भाई खड़े हैं। उनको देखने के बाद उसके हृदय में दया आती है, कैसे इन लोगों को मार दूंगा तो क्या फायदा युद्ध जीतने का, और दूसरा फिर उसके अंदर भोग कि मैं इन लोगों को मार दूंगा फिर भोग कैसे करूंगा, तीसरा कारण आता है कि अगर इन लोगों को मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और चौथा कारण कि हमारा जो वंश परंपरा है वो खत्म हो जाएगी, और पांचवा कारण दूसरे अध्याय में आता है जब वो समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, विमोह की अवस्था में आ जाता है, वो पांचवा कारण है। हम लोग अगले सोमवार को जब दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे तब हम उसके बारे में सुनेंगे, और दूसरे अध्याय से ही भगवान जो है बोलना शुरू करते हैं। अब इस अध्याय में भगवान वास्तव में बोलते ही नहीं है, पहला चैप्टर जो है बिना भगवान के बोले ही ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और दूसरे चैप्टर में जब अर्जुन भगवान से कहता है कि मैं आपका शिष्य बन गया हूं और आप मेरे गुरु बन जाइए, आप कृपया मुझे ज्ञान दीजिए, तब भगवान गुरु बनते हैं और जो है अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो हम लोग अगले सोमवार को, डेट कौन सी होगी, 31 तो 31 मई को हम लोग सेकेंड चैप्टर का आधा पोर्शन और 1 जून को सेकेंड चैप्टर का रेस्ट पोर्शन सुनेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर, चूंकि बड़ा चैप्टर है, लगभग उसमें 72 वर्सेस हैं, तो उसको हम दो दिन में लेंगे और उसका ओवरव्यू हम लोग अगले सोमवार और मंगलवार को करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। अध्याय दो का नाम है गीता का सार, वो हम लोग अगले सोमवार को पढ़ेंगे। अगर अभी आप लोगों में से किसी का प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए।